बड़े आनंद की बात है कि भक्तमाल में अब पांडवों की कथा चल रही है। पांडव क्यों हुए कि पांडु के पुत्र होने से वे पांडव हुए। पांडोरपत्यम पुमान पांडव है। पांडु थे, इनके दो भाई थे, एक धृतराष्ट्र एक विदुर। तीनों अलग अलग माताओं से हुए थे। उनमें विदुर जी थे, ये दासी पुत्र थे। धृतराष्ट्र ये अंबिका अंबालिका और अंबा, ये तीन बहनें थी। एक तो अंग देश में चली गई और दो बहनें रही। ये दोनों विचित्र वीर की पत्नियां थीं और छोटी अवस्था में निसंतान होकर विचित्र वीर का स्वर्गवास हो गया। तो माता सत्यवती के मन में चिंता हुई कि मेरा बेटा ये भीष्म ये तो विवाह करेगा नहीं, प्रतिज्ञा कर रखी है, और मेरे पुत्र विचित्र वीर के संतान नहीं है, अब क्या वंश खत्म हो जाएगा। पुराने जमाने में वंश रक्षा के लिए माताएं बहनें भाई लोग बहुत यत्न बहुत चिंतित रहते थे। वंश खत्म होने का अर्थ है हमारा धर्म खत्म हो जाएगा। ये तो प्रारब्ध से जो वंश खत्म होता उसके लिए चिंता थी। प्रारब्ध ये भाग्य है उसके लिए इतनी चिंता। तब सत्यवती ने व्यास जी को बुलाया और व्यास जी को बुला करके कहा कि व्यास, तुम्हारी दृष्टि दिव्य है, तुम्हारा संकल्प दिव्य है, ये वंश चलना चाहिए। तो व्यास जी ने एक एक स्त्री को बुलाया, अपना संकल्प था, अपने भाव से उसमें संकल्प रखा। तो एक ही तो मां थी, वो डर गई व्यास जी का विकराल रूप देखा तो उसके अंधा हुआ धृतराष्ट्र। एक थी वो व्यास जी को देखकर पीली पड़ गई, डर उसको भी लगा तो उसके हो गया पांडु। और एक दासी पुत्र, दोनों पुत्रों से संतुष्ट नहीं हुई। फिर एक दासी पुत्र आई बड़ी शिक्षा से, न डरी न कुमलाई न कोई उसके मन में कोई भय लगा, कुछ भी नहीं लगा, खड़े रहे कि इसके बड़ा नीतिमान पुत्र होगा। उसके हुए विदुर जी। इन तीनों पुत्रों में बड़ा पुत्र तो धृतराष्ट्र था, और वो जन्मांध होने के कारण से पांडु को राज्य मिला। राजा महाराजा होते थे ये केवल महलों में नहीं रहते थे, वो प्राय कभी कभी जंगलों में भी जाया करते, जंगल में निवास करते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हमारी संतानें हो जाएंगी, राज्य करने लायक हो जाएंगी, तो हम छोड़ छाड़ करके जंगल में चले जाएंगे। आने वाली पीढ़ी जब तैयार हो जाती है तो अपना कार्यभार उनको सौंपना ये बड़ों का काम होता है। ऐसा नहीं कि बाप और बेटे दोनों ही एक काम में ही लगे रहे। राजा भी विस्तारवादी हो और उनका बेटा भी विस्तारवादी हो, राज्य का विस्तार हो नहीं। अब राजा बेटा हो गया, अच्छा ही हो, वो जाएगा। इसका पहले से अभ्यास करते थे राजा जंगलों में रहने के। तो कुंती उनकी पत्नी थी पांडु की, ये दोनों जंगलों में रहने लगे, यही स्वाभाविक। तो वहां एक बार अकस्मात राजा शिकार खेलते खेलते एक हिरण को उसने बाण मार दिया। वो हिरण था, वो किंदम नाम का ऋषि था, किंदम। उसके बाण मारा तो वो हिरण शरीर से छूट करके मनुष्य शरीर में आया है। कहा कि महाराज, मैंने तो हिरण समझ करके बाण लगाया, आप तो ऋषि हो। कहा कि मैं तो तुमको शाप दे चुका हूं, जिसने भी मेरे ये बाण लगाया है वह भी संतान अवस्था में उसका देहांत हो जाएगा, मर जाओगे। स्त्री के पास जाओगे, मर जाओगे। ये सुनकर के पांडु घबराया। अब ये प्रश्न होता है कि वो ऋषि हिरण क्यों बने, उनकी पत्नी हिरणी क्यों बनी, तो इसकी गहराई में जाना चाहिए। ये ऋषि इतने प्रबल थे, किसी इतिहास में नहीं मिलेगा, किसी संस्कृति में इतना बड़ा तप नहीं मिलेगा कि अपनी तपस्या के प्रभाव से अपना शरीर बदल गए। ये केवल हमारे धर्म में मिलेगा। तपस्या की शक्तियां हमारे धर्म में जैसी कहीं और धर्म में तपस्या है ही नहीं, इसलिए हमारी इन बातों पर उनको विश्वास नहीं होता, भले ही मत हो। कम से कम हम लोगों को तो हमारे बडेरों के तपोबल पर विश्वास करना चाहिए। आज हम हिंदुओं का ही विश्वास नहीं है, हमारे ग्रंथों पर, हमारे ऋषि मुनियों की चर्याओं पर हमको ही भरोसा नहीं है, हम ही मखौल उड़ाते हैं। तो वो हिरण बन सकते थे, वो अपना रूप बदल सकते थे, ऐसी उनमें तपस्या की शक्तियां थी। तो वे ऋषि थे, हिरण हिरणी क्यों बने, उनके मन में कितना बड़ा मानव शरीर का आदर था कि मानव शरीर मिला है ये भोगने के लिए नहीं मिला है, मानव शरीर केवल भजन करने के लिए मिला है। तो तपस्या तो की मानव शरीर में, और भोगने का स्थान बनाया उन्होंने पशुओं का शरीर। कितना ठीक सूक्ष्म उनका गहना गहन विचार था। बेचारे पांडु को क्या बता, उन्होंने पशु समझा, शिकार खेला, बाण लगाया, ऋषि के लग गया, शाप दे दिए। तो ऋषि भी ये ऋषि के साप से पांडु बड़े चिंतित रहने लगे। कुंती और माद्री ये दोनों उनकी पत्नियां थी, तो उन्होंने पहले कुंती को और माद्री को ये बताया नहीं, उदास रहने लगे एकदम। तो दोनों पत्नियों ने पूछ ही लिया कि आखिर आप उदास क्यों हैं। हमारे यहां पतिव्रता जो स्त्रियां होती थी उनके लिए पति का ही आराम, पति का सुख ही अपना सुख है। पति का दुख ही अपना दुख होता है। कितना उच्च भाव था उन माताओं बहनों का, है भी आप लोगों के लिए एक तरफ कई प्रकार के आराम है, लेकिन पति को यदि कष्ट है तो माताएं बहने उस आराम को ठुकरा दे दी। पति का कष्ट है तो फिर काय का आराम। राम जी वन में गए और माँ का कितना स्नेह होता है, पर माँ वन में नहीं गई कौशल्या माता। क्यों नहीं गई? कि मेरे पतिदेव यहां बैठे हुए हैं। यदि दशरथ जी जीवित नहीं रहते तो संभवतः कौशल्या जी चली जाता, पर मेरे पति यहां बैठे, पति को छोड़ करके मैं पुत्र के प्रेम में मोह में कैसे वन में जाऊंगा? नहीं नहीं, ये आदर्श है। तो कुंती ने और माद्री ने दोनों ने ही पूछ लिया कि प्राणनाथ आजकल बहुत उदास रहते हो, बात क्या है? तो छिपाएगा नहीं कुछ नहीं, तो उनको बतानी पड़ेगी बात। तो आप उदास रहो और हम लोग यहां स्वस्थ रह कैसे सकते हैं? तब पांडु ने बता दिया, ऐसे मेरे बाण लगाया मैंने, वो वास्तव में ऋषि थे, उन्होंने साथ दे दिया। अब मेरे मन में और कोई चिंता नहीं, चिंता यही है कि पहले भी मेरा वंश खत्म हुआ तो वेद व्यास जी की कृपा से हम लोग पैदा हुए, हमारा तो फिर वंश के अंदर नुकसान हो जाएगा, अब क्या क्या। तब कुंती माता ने कहा कि देखिए, जो ऋषि का शाप है वो तो है ही, मेरे पास भी ऋषि का वरदान है। दुर्वासा ऋषि का मेरे पास वरदान है, यदि आपसे सृष्टि नहीं होती है तो कोई बात नहीं, मैं देव सृष्टि दिव्य सृष्टि बना लूंगा। तो पांडु ने पूछा ये क्या बात है भाई? तब उसने बताया कि ऐसे ऐसे दुर्वासा ऋषि की मैंने छोटी बच्ची थी सेवा की, और एक तो मैं छोटी थी एक बच्ची थी, और एक वो ऋषि अब आए उनकी मैंने खूब सेवा की, भोजन कराया, जो चीज कहा वो चीज उनके सामने उपस्थित कर दी। अब छोटे पर सब दया करते ही उन्होंने मुझे वरदान दिया कि जिस देवता को स्मरण करोगे वो आ जाएगा और जो तुम चाहो सो मिल जाएगा। तब उन्होंने धर्मराज को याद किया, इंद्र को याद किया, वायु को याद किया, इधर माद्री के कोई संतान नहीं थे तो अश्विनी कुमारों को याद किया, ऐसे इनके पांच संतान आई। तो ये पांचों संतान मिलकर के पांडव कहलाए। इन पांडवों में सबसे बड़े थे युधिष्ठिर। युधिष्ठिर के लिए आता है कि धर्मो विवर्धति युधिष्ठिर कीर्तन एन, युधिष्ठिर का नाम लिया जाए युधिष्ठिर युधिष्ठिर तो धर्म की अभिवृद्धि होती है। सेठ जी ने एक बात कही थी कि कभी कोई काम ऐसा पड़ जाए उलझन का, या कौन सा करें क्या करें, इधर ये बात भी सही बोल रहे हैं, इधर ये बात भी सही बोल रहे हैं, अब इसमें कौन कैसे क्या है, इसमें क्या न्याय करें, क्या धर्म है क्या नहीं है, अपने समझ में नहीं आए तो या तो राम जी का ध्यान करो या युधिष्ठिर का ध्यान करो। राम जी होते तो इस समय में क्या निर्णय करते, तो जो बात पहले आ जाए ध्यान में बस वो राम जी का आज्ञा है, वो राम जी की आज्ञा है, वो राम जी का मत है, अथवा युधिष्ठिर का ध्यान कर लो, जो बात याद आ जाए ये युधिष्ठिर चाचा थे। तो धर्मो विवर्धति युधिष्ठिर कीर्तन ही न, ऐसे धर्मराज थे युधिष्ठिर। युधिष्ठिर महाराज के लिए कितना बड़ा युद्ध हुआ पांडवों का कौरवों का, कितने घोड़े हाथी पैदल बड़े बड़े योद्धा मरे, परंतु युधिष्ठिर महाराज अजात शत्रु कहलाए कि उनका कोई शत्रु नहीं। कोई शत्रु क्या नहीं, स्वयं धृतराष्ट्र के पुत्र उनके शत्रु, कर्ण उनका शत्रु, जितने धृतराष्ट्र के पक्षपाती, दुर्योधन के पक्षपाती, सब युधिष्ठिर के शत्रु, लेकिन कहते हैं अजात शत्रु। इतना बड़ा युद्ध हो गया, युद्ध के बाद अंत में राजगद्दी युधिष्ठिर को मिली और फिर भी कहते हैं युधिष्ठिर अजात शत्रु, इनका कोई शत्रु है ही नहीं। तो ये नाम क्यों रखा गया कि इनके मन में शत्रुता नहीं थी, इन्होंने अपनी तरफ से किसी को शत्रु माना नहीं, इसलिए वो अजात शत्रु थे। दूसरा कोई शत्रुता रखता है उसमें तो ये क्या करे, पर अपनी तरफ से इन्होंने कोई शत्रु माना नहीं। सेठ जी ने कहा कि गीता जी के कई श्लोक हमारे आचरण में आते हैं, 12वां अध्याय है वो भी हमारे आचरण में आता है, एक चीज आचरण में नहीं आती, क्या? यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते चेति। आदमी को किसी भी किसी से भी उद्विग्न नहीं होना चाहिए, ये तो मेरे समझ में आता है, कोई हमारी कितनी निंदा करे, कोई कितना ही हमको खराब बताए, हमारे पर झूठे कैसे भी लांछन लगाए, कुछ भी करे, हम विचलित न हो, ये तो बात समझ में तो आती है, लेकिन दूसरों को हम विचलित न करें तो हम हमारी तरफ से ऐसा करना नहीं, लेकिन हमको देख देख कोई नाराज हो जाए तो हम क्या करें, कोई यूं ही नाराज हो जाए। लोकानोद्विजते चाहिए तो है, यस्मानोद्विजते लोको, ये समझ में नहीं आता। हम हमारे चाल से चल रहे हैं, लोग हैं देखो, फोकट का खाते हैं, मस्ती से जा रहे हैं, इनको क्या चिंता है, कोई क्या कहे, कोई अब देखती कोई चिढ़ जाए तो हम क्या करें। तो उन्होंने यही कहा कि अपना भाव नहीं होना चाहिए, बस यही, कोई अजात शत्रु पद पर उन्होंने इसी बात को समाहित किया कि जैसे युधिष्ठिर महाराज के शत्रु होते हुए भी उनको अजात शत्रु इसलिए कहा कि मन में उन्होंने शत्रु नहीं माना, ऐसे हमको हमारे मन से किसी को उद्विग्न करना है इस भाव से क्रिया नहीं करनी चाहिए। अब कोई हो जाए तो उसका स्वभाव, हम क्या क्या है? ऐसा करके सेठ जिनका मेरे मैंने इतना ही समाधान किया, और तो कोई समाधान हो नहीं सकता। तो युधिष्ठिर महाराज ऐसे थे, युधिष्ठिर महाराज बचपन से ही बड़े सत्यवादी, मितभाषी, मृदुभाषी, सबका आदर करने वाले, कहते हैं दुर्योधन को भी वो सुयोधन बोलते थे। जब वे गुरुकुल में निवास करते थे तो गुरुजी ने कहा कि देखो बेटा, सत्यम वद, सत्य बोलो। तो कहा कि सत्य बोलो माने जैसा देखा, जैसा सुना और जैसा समझा वैसा बोल देने का नाम सत्य बोलना है, सत्यम वद। ये वेद वाक्य है, इस वेद वाक्य को मैं अपने गुरुमुख से लेकर तुमको सुनाता हूं, तुम इसको वेद वाक्य भी मानो और गुरुमुख निश्चित मानो, माने मेरे गुरु के द्वारा कहा हुआ वाक्य है, इसको स्वीकार कर। बोलो शिष्य स्वीकार करोगे? सबने कहा करेंगे। क्या बताया मैंने? सत्यम वद। दूसरे दिन फिर कक्षा लगी और कहा कि भाई कल मैंने क्या पाठ पढ़ाया याद है? जिनको याद नहीं है वो हाथ खड़ा करे। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि मेरे को याद नहीं। युधिष्ठिर तेरे को याद नहीं? सत्यम वद, सत्य बोलना चाहिए, तेरे को याद नहीं हुआ? याद नहीं हुआ मेरे, देखो सत्य बोलना चाहिए, असत्य वाणी से सत्य तत्व की प्राप्ति नहीं होती। कि ये तो मैं सुन लिया, आपने बताया, पर समझा नहीं। फिर कहा कि देखो सबसे बोलो, सबसे बोलो, ये तो बात है ही। अच्छा ठीक है, तुम समझ लो, एक बात और देता हूं, सत्य बोलो और कभी किसी पर भी नाराज मत हो, चाहे अपने से छोटा हो चाहे बड़ा हो, किसी पर भी नाराज होने का स्वभाव मत बनाओ, खींचो मत, चाहे बिना कारण ही आप पर कोई लांछन लगाए, बिना कारण आपका अपमान करे, बिना कारण आपका भरी सभा में तिरस्कार कर दे, तो भी खींचो मत, नाराज मत बनो। ये पाठ और दे दिया, सबने कहा ठीक है, और हमने याद कर लिया क्या सत्य बोलना चाहिए, किसी पर नाराज नहीं होना चाहिए, चाहे कोई हमारा कितना ही अपमान कर दे, सभा में कह दे, छोटा भी बोल दे तो भी, बड़ा बोल दे तो भी, हमारे से छोटा है, देखो अपने से जो छोटा होता है ना उसका अपमान सहन करना मुश्किल होता है। अपना पिता यदि सभा के अंदर अपमान कर दे तो थोड़ा ये सोच सकते हैं कि पिताजी है क्या कहें, लेकिन अपने आप बेटा यदि अपमान करे या अनजान आदमी और छोटा छोटे तबके का हो वो तकलीफ होती है, कहां साहब नहीं अपमान, हम नाराज नहीं होंगे, नहीं होंगे कि नहीं होंगे, पाठ पढ़ लिया पढ़ लिया। दूसरे दिन फिर कहा, क्यों भाई युधिष्ठिर तुमको पाठ याद हो गया कि महाराज हमको सत्यम वद ये भी याद नहीं हुआ, और मां क्रोधं कुरु क्रोध मत करो ये भी याद नहीं हुआ, ये कोई बात है, सबसे अच्छे विद्यार्थी हो, सबसे ज्यादा बुद्धिमान हो और ये ठस बुद्धि वालों ने याद कर लिया, तुमने याद नहीं किया, खूब खूब सुनाया युधिष्ठिर को, मरा याद नहीं हुआ, अब इस विषय को क्या याद नहीं हुआ, याद नहीं हुआ, गुरु जी को आ गया क्रोध, गुरु जी ने उठा के एक थप्पड़ रख दी उसके, इतना छोटी सी बात तेरे को याद नहीं, हाँ अब समझ में आ गई, अब समझ में आ गई, क्रोध नहीं करना चाहिए, समझ में आया। तो फिर यही बात मैं पहले बोल रहा था और यही बात मैंने अब बोली है, क्या समझ में नहीं आया था कि महाराज जब तक ज्ञान हमारे व्यवहार में नहीं उतरता तब तक उसको समझ में आ गया कैसे कह सकते हैं, ज्ञान तो वही है कि जो हमारे व्यवहार में आ जाए, जैसे हमारा कपड़ा है, यदि हम उसको पहन लेते हैं तब तो कहेंगे हाँ ठीक है साहब कपड़ा दे दो, हमारा कपड़ा पड़ा है, कपड़ा पड़ा है, हाँ हमारे पास कपड़ा है, अरे है तो वो पहनने में तो नहीं है ना, ऐसी ज्ञान की बातें बुद्धि में तो हमने रख ली, सत्यम वद धर्मम चर मां प्रमादं कुरु मां क्रोधम कुरु, लेकिन जीवन में नहीं आए, आज आपने थप्पड़ लगाई मैं आपको जीवन में आएगा, आप पर आप तो खैर मेरे गुरु हैं, जितना भी थप्पड़ मारो उतना कम है, लेकिन ये समझ में आया कि नाराज नहीं होना चाहिए, कुछ समझ में आई बात, तब गुरु जी के भी मन में विचार आया कि अरे इसका कहने का तरीका और था और मैंने अपना और ही तरीका समझ लिया, युधिष्ठिर को आशीर्वाद दिया, युधिष्ठिर मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि जो गुरु मुख से वाक्य निकलेगा वो तुम्हारे व्यवहार से ओतप्रोत हो जाएगा, एकदम व्यवहार से मिल जाएगा, जैसे दूध के अंदर जल मिलाते हैं तो फिर उसमें जल नहीं दिखता, दूध ही दूध दिखता है, ऐसे ही जो मेरे मुंह से वाक्य निकलेगा वो तेरे अंदर जो ही जाएगा, स्वीकार कर लेगा तो बस वो तेरे व्यवहार में आ जाएगा, ये संदेह हटा जाएगा। ऐसे गुरु महाराज ने इनको शिक्षा पढ़ते तो सभी थे परंतु इनका ये व्यवहार देख करके गुरु जी पर असर पड़ा। युधिष्ठिर के संबंध में बड़ी विचित्र बात है, पिता का देहांत तो जल्दी हो गया था, ये धृतराष्ट्र को अपने पिता से बढ़कर मानते थे, वो ये मन में सोचते थे कि शायद आज पांडु मेरे राजा पिताजी होते, उनकी बात शायद मैं मानता न मानता, लेकिन धृतराष्ट्र हमारे पिता के बड़े भाई, इनकी तो हर आज्ञा का पालन होगा। अब आप बताइए, जुआ खेलना युधिष्ठिर महाराज खराब नहीं मानते थे क्या? जुआ खेलना युधिष्ठिर महाराज बहुत खराब मानते थे, परंतु पिता ने कह दिया, धृतराष्ट्र ने कह दिया, पिता ने कह दिया कि देखो मेरी आज्ञा है तुमको जुआ खेलना होगा। अब मेरी आज्ञा है, अब बेचारे कहां जाएगा? लोग कहते हैं कि देखो आजकल जो है ना जुआ खेलने वाले लोग, ये उदाहरण देते हैं, युधिष्ठिर जैसे को भी जुआ अच्छा लगता था, वो भी इतने बड़े धर्मात्मा होकर जुआ खेलते थे, तो हम जुआ खेलते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अपने शोक को पुष्ट करने के लिए, अपनी आदत को अच्छा बताने के लिए बड़े पुरुषों का उदाहरण देते थे, आड़ ले लेते हैं, ये बहुत खराब बात है। बड़े पुरुषों की आड़ में ऐसा करने पर बहुत नुकसान उठाना पड़ता है, भागवत में साफ कहा है। बड़े पुरुषों का जो आचरण आपके समझ में नहीं आए, वो आचरण करने योग्य नहीं होता। इसी प्रकार से युधिष्ठिर महाराज ने जो आचरण किया, वो पितृभक्ति के कारण से किया। मन में सोचा कि पिता यदि मुझे आज ये आज्ञा दे रहे हैं, मेरे मन में ये भाव आ जाएगा कि पिता की आज्ञा की अपेक्षा मेरा संकल्प बड़ा है, तो इससे मैं कभी पिता की अवहेलना कर सकता हूं, तो इतना बड़ा पाप मैं नहीं कर सकता हूं, चाहे जुए में कुछ भी हो जाए, जुआ खेले, सब दासी बन गई, दास बन गए, ये बात सब गांधारी ने आकर के फटकारा धृतराष्ट्र को कि आप बच्चों को ऐसी आज्ञा देते हो, बच्चों को बिगाड़ते हो, एक तरफ अपने बच्चों का पक्ष लेते हो और मरे हुए पांडु के पुत्रों के साथ अन्याय करते हो, देव इनका राज्य वापस, दासत्व से मुक्त करो। द्रौपदी भी खूब वहां पर सभा के अंदर बोली है, गांधारी के फटकारने से धृतराष्ट्र कुछ बोले नहीं, बात भी सही है, उसके बाद उन्होंने सब कुछ दे दिया। तब शकुनी ने इन्होंने चारों लोगों ने मिलकर के वापिस षड्यंत्र किया। विदुर जी ने जाकर मना किया कि देखो दोबारा षड्यंत्र हो रहा है युधिष्ठिर, तुमको फिर बुलाएंगे जुए में, अब जुआ तुम मत खेलना। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि मैं नहीं खेलूं, ये बात तो ठीक है, परंतु पिता आज्ञा ही न देंगे, आप उनको ही जाके बोलो ना, वो आज्ञा देंगे मैं क्या करूं, उनकी आज्ञा को भंग नहीं कर सकता। तो बाबा आप कम से कम अपने दाव पर तो मत लगाना, किसी को दासी तो मत उड़ने देना, द्रौपदी को दाव पर लगा दिया, भाइयों पर दाव लगा दिया, ऐसी पिछली गलती मत करना, ये बात ठीक है, अब मैं दाव पर नहीं लगूंगा। युधिष्ठिर जी महाराज को 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास, ये सब उस जुए के कारण से भोगना पड़ा, परंतु पिता की आज्ञा को नहीं टाला। वनवास में रहते थे, एक बार सेना सहित दुर्योधन पहुंच गया कि तो 5 जने इनको हम मार देंगे, कह देंगे साहब जंगल में मर गए। जो दूसरे का बुरा सोचता है उसका बुरा पहले होता है। देखो आदमी देखता है कि बुरा करने पर बुरा होता है, बुरा करने पर बुरा नहीं होता है, बुरा होने पर बुरा करता है। चोर है वो चोरी करने से चोर नहीं होता है, चोर चोर होकर के चोरी करता है। ये बातें सत्संग से समझ में आती है, समझ में नहीं आती। लोग कहेंगे क्या ये चोर कैसे है जी, इसने चोरी की है। अच्छा यदि उसने चोरी नहीं की होती, मौका नहीं मिला होता और चोरी करने का भाव पैदा हो गया तो वो चोर नहीं है क्या? है। उसके भाव में ही आया कि मैं यहां आऊं, मकान में आकर मेरे मन में आ जाए, मैं आऊं या चोरी करूं। चारों तरफ से आया, देखा कमरा मकान बंद है, सुरक्षा भी है, यहां पर पहरा भी चलता है, मेरी यहां पर कोई दाल नहीं गली, तो मैं चोर नहीं हुआ क्या? चोर तो हो गया। चोरी करने की इच्छा होते ही वो चोर हो गया। ऐसे ही बुरा करने से दुर्योधन बुरा हो गया, ऐसा नहीं, बुरा भाव पैदा होते कि अब इनको जंगल में मारूंगा, अपनी सेना ले जाकर के चारों तरफ से घेर लिया। तो इधर इंद्र ने गंधर्वों को भेजा, कहा कि देखो धर्मात्मा मेरे पुत्र हैं, इन पर आंच न आए, तुम जाओ और तुम जाकर के दुर्योधन को कैद कर लो, और हो सके तो दुर्योधन को तुम मार दो। अब गंधर्व इतने बलशाली, चित्रसेन गंधर्व वगैरह आए और दुर्योधन की सेना पर आक्रमण किया, दुर्योधन को पकड़ लिया, रस्से से बांध दिया, रस्से से बांध दिया। तो फिर बाद में अब जो है उसको मारने, इधर पता चला युधिष्ठिर महाराज को। युधिष्ठिर जी ने कहा कि देखो भाई, मैं तो नहीं जा सकता, लेकिन भीमसेन और अर्जुन तुम दोनों जाओ। भीमसेन ने कहा, क्या पागलों की सी बात करते हो, वो खुद अपने आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारता है, आप जाकर के उस कुल्हाड़ी को छीनते हो, मरने देना उसको, अपने लक्ष्मण से मर रहा है, हमको मारना नहीं पड़ेगा। कहा कि देखो, या तो तुम जाओ नहीं तो फिर मुझे जाना पड़ेगा, तुम बैठे रहोगे, मैं जाऊंगा अच्छा नहीं लगेगा। भीमसेन ने कहा कि आप जाओ, इसलिए भी हम डरपोक थोड़े ही, हम नहीं जाना चाहे, हम तो कहते दुर्योधन इससे भलाई के लायक ही नहीं है। कहा कि भाई उमा संत की यही पढ़ाई, मंद करत जो करे भलाई। अर्जुन और भीमसेन दोनों ही गए। गंधर्वों ने कहा, अरे बाबा तुम क्यों आए हमसे लड़ने के लिए, तुम्हारी बुद्धि खराब है, हम तो तुम्हारे लिए आए हैं, इसको पकड़ करके इसको ले जाएंगे, हम तुम्हारा सदा का कांटा निकालने के लिए आए, तुमको 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास, आगे जाने क्या क्या करेंगे तुम्हारे साथ। तो कहा कि हमारे भाई साहब ने आज्ञा दी है। अरे भाई साहब ने क्या आज्ञा दी है, ये तुमको कष्ट देगा। एक बात है, हमारे भाई साहब ने आज्ञा दी कि वयम पंच वयम पंच वयम पंच शतंचति, हम 5 हैं। फिर कहते हैं हम 5 हैं, हम 5 हैं और वो 100 है, हमारी आपस में यूं चलती है, इसमें संदेह नहीं, पर आपस में चलती है। अन्येषां बधार्थाय, पर दूसरा कोई आ जाए तो उसके मारने के लिए हम 105 हैं, वहां हमारा भेद मतभेद नहीं चलेगा, मतभेद चलेगा ही नहीं, 105 है। तो गंधर्वों से उसको छुड़ा दिया दुर्योधन को, परंतु फिर भी दुर्योधन का हृदय युधिष्ठिर जी से बदला नहीं। सेठ जी ने एक बात कही, कोई हमारे साथ बुरा करता है तो उसके हृदय को बुराई से नहीं बदल सकते, भलाई से बदल सकते हैं। तब उनके सामने प्रश्न किया एक सत्संगी ने कि सेठ जी, दुर्योधन के साथ कितना भला किया पांडवों ने, दुर्योधन का हृदय तो नहीं बदला। तो सेठ जी ने कहा, हृदय बदला कि नहीं बदला इस बात का तुमको क्या पता, तुमको क्या पता, तुम उसके हृदय में थे क्या? हृदय में तो नहीं थे, उसका व्यवहार बताता है, उसने तो वही कटता रखी पांडवों के साथ, वही लड़ाई झगड़ा, वही सब कुछ, हृदय बदला का उसका। सेठ जी ने कहा कि उसको जब ये कहा जाता था कि तेरे को गंधर्वों ने पकड़ लिया, आखिर तो तुझे युधिष्ठिर ने छुड़ाया, इस बात का वो कोई जवाब देता था क्या? इस बात का कोई जवाब देता था कि नहीं? फिर दूसरी बात, उसके बाद वो इतना अपने करतूतों से घृणा में डूब गया कि देखो जिनको मारने के लिए मैं सेना लेकर आया उन्होंने मुझे प्राण दान दिया, छुड़वाया, वो खुद मरने के लिए तैयार हो गया था, वो खुद मरने के लिए तैयार हो गया। फिर कर्ण ने आकर के मना किया, दुशासन ने मना किया कि जी वो तो आपकी प्रजा है, प्रजा का काम है रक्षा करने का, तो उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया है, आप क्यों मरते हो इसमें? दुष्टों का संग खराब होने से उनको इस प्रकार से उसकी ग्लानी का पूरा व्यवहार देखने में नहीं आया। अंदर में तो ग्लानी थी कि मैं मर जाऊं तो अच्छा है, इससे युधिष्ठिर के सामने किस मुंह से जाऊंगा, भीमसेन से किस मुंह से बात करूंगा, भीमसेन यही कहेगा अरे कल तो तू मरने वाला था, हमने तेरे को बचाया है और आज तू इतनी बातें करता है, मैं क्या कहूंगा उसको? तो कर्ण ने रण कहा कि देखो आप तो राजा हो, ये तो आपकी प्रजा है, प्रजा का कर्तव्य होता है राजा की आफत में रक्षा करना, तो क्या हो गया? ये कोई बात नहीं, कोई इनका ऐसा, ऐसे करके उसकी भावनाओं को बदल दी। पर उसके मन में आ गया कि नहीं, मेरे साथ इन्होंने कैसा बर्ताव किया और मैंने इनके साथ कैसा बर्ताव किया। युधिष्ठिर जी महाराज जो बात बोलते थे वो करके बताते थे। द्रौपदी पर जयद्रथ की दृष्टि खराब हो गई, वो जंगल में से उसको उठा लाया, अपने रथ में जबरदस्ती बैठा लाया और इधर द्रौपदी जोर जोर से चिल्लाई, उसका ज्ञान पांडवों को हुआ, फिर पांडवों ने जाकर जयद्रथ को पकड़ करके जो जयद्रथ को वहां मारा है वो तो प्राण ले लेता भीमसेन, जयद्रथ को वहां मार ही देता, पर ये देखा कि महाराज की आज्ञा के बिना मैं कैसे मार सकता हूं, युधिष्ठिर की आज्ञा के बिना, तो ले गया युधिष्ठिर के पास, दे जाके पटका उसको जोर से, पटकने से उसे बड़ी भयंकर चोट आई, कहा कि बोलो अब इसने ये पाप किया है तो क्या करना चाहिए? युधिष्ठिर महाराज ने कहा इसको मारना मत, क्योंकि आखिर हमारा बहनोई है, दुश्चला है, वो दुर्योधन की बहन थी, उसका ये पति हमारा बहनोई है, तो मारो मत, और कोई बात मारो मत कर दिया। तो दुर्योधन ने नहीं, जयद्रथ ने इतना भयंकर पांडवों के साथ में व्यवहार किया, लेकिन क्षमा कर दिया, उनके अंदर क्षमा थी। युधिष्ठिर महाराज ने एक बार की बात, एक ब्राह्मण आया युधिष्ठिर महाराज से कहने लगा, महाराज मेरी अरणी थी, अरणी, अरणी में एक यज्ञ की लकड़ी होती है, जिस लकड़ी के साथ अरणी का अरणी के साथ संघर्षण होता है तो अग्नि प्रज्वलित होती है, उसको अरणी मंथन करते हैं। तो ब्राह्मणों ने, अग्निहोत्री ब्राह्मण थे, उन्होंने अपनी अरणी को एक जगह यूं टांग रखा था, तो एक हिरण आया, वो खुजाल करता था, खुजाल करते करते उस अरुणी अरुणी लकड़ी थी वो उसका हिस्सा उसके सींग में अटक गया और वो भग गया। हिरण के सींग होते हैं डबल डबल सेक होते हैं, उसमें वो लकड़ी अटक गई। ब्राह्मण गया अरणी लेने के लिए, हिरण भग गया। वो ब्राह्मण आया, महाराज मेरी अरणी चली गई और जब तक वो अग्नि प्रकट नहीं करूंगा तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा, अग्निहोत्री हूं, मेरा तो यज्ञ सब बंद हो जाएगा, उस हिरण को खोजना है, क्या क्या? तो वही शरणागत ब्राह्मण, इसकी तो रक्षा करना अपना काम है, पांचों पांडव उस हिरण के पीछे पीछे दौड़ते गए। दौड़े दौड़े गए, कहीं हिरण तो मिला नहीं और उनको प्यास लगी आई। प्यास लगी आई तो एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, आगे पानी पानी है ही नहीं। ऐसा इलाका जिसमें निरुदक, निरुदक माने जहां पानी सहजता से उपलब्ध नहीं होता। फिर थोड़े से कोई पक्षी वगैरह उड़ते दिखाई दिए, और उधर पक्षी उड़ते हैं शायद वहां पानी मिलेगा, तो सहदेव गया। फिर वहां यक्ष बैठा ही था, आप सब कथा जानते हो। वो जल लेने के लिए गया, इतने में गए स्पर्श मत करना, मर जाओगे, अब दिखे नहीं। ऐसे ही कोई बोलता वो उसने जल लिया, खत्म। नकुल गया, अर्जुन गया, भीमसेन गए, और फिर अंत में युधिष्ठिर महाराज गए। वो साक्षात धर्मराज ही थे जो अव्यक्त होकर के सबके धर्म की परीक्षा ले रहे थे। अब धर्मराज धर्मराज की परीक्षा ले, यक्ष बनकर के प्रकट होकर के कहने लगा कि भाई इस संसार में आश्चर्य क्या है? आश्चर्य, इतना सुंदर उत्तर दिया, इतना सुंदर उत्तर दिया युधिष्ठिर महाराज कि अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषास्थातुमिच्छन्ति किम आश्चर्यम अतः परम। रोज 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 ये लोग मरते जा रहे हैं, रोज मर रहे हैं। कहते हैं क्या हो गया, कल क्या तारीख थी? कल 1 अगस्त था, कल सावन शुक्ला पंचमी थी, कल शुक्रवार था, कल का दिन चला गया। अरे कल का दिन नहीं गया, हम मौत के नजदीक पहुंच गए हैं। कालस्य किम गच्छति याति यौवनम, काल का क्या गया, तुम्हारा समय चला गया जीने का। मनुष्य देखता है समय बीतता है, समय नहीं बीतता है, वो स्वयं बीत रहा है। कालस्य किम गच्छति, काल का क्या जाएगा, याति यौवनम, अपना जीवन जा रहा है। तो अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम, रोज रोज आदमी मरते हैं, ऐसा कोई दिन नहीं, ऐसा कोई घंटा नहीं, ऐसा कोई मिनट नहीं, ऐसा कोई सेकंड नहीं कि जिसके अंदर संसार में इतने प्राणी कोई मरता ना हो। लेकिन जो पीछे जीने वाले सोचते हैं कि वो मरने वाले तो मर गए, हम तो यहां अमर होकर के रहेंगे, इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा, इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा। ऐसे करके कई प्रश्नों का उत्तर दिया, वो यक्ष खुश हो गया। खुश होकर के कहने लगा, अच्छा युधिष्ठिर तेरे चार भाई हैं, चार भाइयों में से किसी एक भाई को जीवित कर ले, मैं जीवन दान दे दूंगा उसको। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि नकुलो यक्ष जीवत, ये नकुल जीवित हो जाए। मूर्ख है, भीमसेन को जीवित करे ना, सो को मारने की प्रतिज्ञा इस भीमसेन ने की है। सो धृतराष्ट्र के बेटों को मैं अकेला मारूंगा, और हमारी सेना में से किसी ने मार दिया तो उसको मैं मारूंगा। इसलिए पांडवों की सेना जब लड़ती थी तो धृतराष्ट्र के पुत्र को कोई नहीं मारता था कि ये तो अभी मर जाएगा मेरे हाथ से, लेकिन मुझे भीमसेन नहीं छोड़ेगा, तो भीमसेन की शिकार है, कोई हाथ नहीं लगाता। तो उस समय में तेरे ये भीम काम आएगा, तू भीम को जीवित करे ना, अथवा कितना बड़ा अस्त्र शस्त्र प्राप्त किया हुआ ये अर्जुन है, जिसको महादेव जी ने भी अपना अस्त्र दिया है, महादेव जी भी प्रसन्न हुए हैं, इंद्र भी प्रसन्न हुआ है, बड़े बड़े योद्धाओं को मारने में यही काम आएगा, तो इसको ले। नकुल क्या करेगा, तेरे नकुल छोटा सा बच्चा है, नकुल क्या करेगा। तो उसने उत्तर दिया कि हे यक्षराज, लोग मुझे धर्मराज बोलते हैं, लोग मेरे से धर्म की आशा करते हैं, हम दो माताओं के पुत्र हैं, एक हमारी माँ कुंती है और एक हमारी माँ माद्री है। माद्री अपने हमारे पिता के साथ सती हो गई, पीछे माद्री ने अपने दोनों पुत्रों को कुंती की गोद में रखा कि जैसे तुम्हारे कुंती बहन ये दोनों लड़के हैं, ऐसे तीनों लड़के, ऐसे दो लड़के और हैं। कुंती माता ने स्वीकार किया है। आज कुंती माँ हम तीनों से ज्यादा इन दोनों का ज्यादा स्नेह और प्रेम रखती है। हम लोगों को बाद में भोजन कराती है, पहले इनको भोजन कराती है, इनका सुख सुविधा का ध्यान पहले रखती है। आज इनकी माँ नहीं है, जन्म देने वाली माँ मेरी कुंती का बेटा मैं हूँ, माद्री का बेटा ये नकुल, ये बड़ा है तो ये नकुल जीवित हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी दो माताएं और दोनों माताओं के हम दो बेटा हैं। ऐसी सुंदर युक्ति सुनकर के इतने आनंदित हुए यक्ष, इतने आनंदित हुए धर्मराज कि वो साक्षात अपना रूप प्रकट हो गए और कहने लगे कि देखो हम तुमको जो है अपना नाम देते हैं। बाप नाम रखता है, तुम्हारे ऊपर एक ऐसी आफत आएगी अज्ञातवास में, तुम अपना नाम कंक भट्ट रख लेना। अज्ञातवास के अंदर युधिष्ठिर नाम तो पार नहीं पड़ेगी, तुम अपना नाम कंक भट्ट रख लेना, क्योंकि तुमको डर लगेगा कि मैं अपना असत्य नाम कैसे रखूं। तो नाम तो जो पिता बोलते हैं ना वही होता, मैं तेरा पिता हूं, मैं तेरा नाम रखता हूं कि तू कंक भट्ट के नाम से बोल। ऐसे सबके नाम बता दिए और हो गया। ऐसी युधिष्ठिर महाराज के अंदर सत्यवादिता थी। कंकबट शायद भीमसेन का नाम हो सकता है, इनका जो भी नाम था वो नाम दिया हुआ उन्होंने रखा धर्मराज ने रखा। विनयशीलता, विनयशीलता दोनों सेनाएं खड़ी हो गई और प्रणाम करने के लिए गई। बड़ी हंसी उड़ाई है दुर्योधन ने, पांडव लोगों ने, नहीं कौरव लोगों ने, अरे शरण में आ रहा, अरे युधिष्ठिर तू मर जाता तू हमारी शरण में आ रहा है, हमारी सेना की शरण में आ रहा है, धिक्कार तेरे बल पौरुष को, धिक्कार तेरे बड़प्पन को, तू मेरा बड़ा भाई है, धिक्कार तुझे भी धिक्कार है और मुझे भी धिक्कार है। युद्ध के अंदर शरणागत क्यों हो, या तो पहले आता युद्ध में तू आ रहा है समझौता करने के लिए, सेना लेकर समझौता होता है क्या? ऐसे ऐसे खूब बोलने लगा युधिष्ठिर जी ने, कोई परवाह नहीं की। पितामह भीष्म से प्रणाम किया, द्रोणाचार्य को प्रणाम किया और कृपाचार्य को प्रणाम किया, तीनों का आशीर्वाद लिया। तीनों ने एक ही बात कही कि युधिष्ठिर हमको तुमसे इसी व्यवहार की आशा थी, यदि तुम ये व्यवहार नहीं करते तो हम तुझे मार देते, हम तुझे दुराशीष देते। लोगों ने युद्ध समाप्ति के बाद पूछा, युद्ध तो शाम को समाप्त हो जाता, फिर आपस में मिलते ही जैसे खिलाड़ी खेल खेलते हैं ना, ऐसे युद्ध होता था। ये कोई अंदर में पूरा बैर रख करके नहीं होता था, किन्हीं किन्हीं के था बैर। तो उस दिन शाम को पांडवों ने पूछा युधिष्ठिर जी से, पितामह भीष्म से, द्रोणाचार्य जी से, कृपाचार्य जी से कि आज यदि युधिष्ठिर महाराज आपको प्रणाम नहीं करते तो श्राप दे देते, ये दुर्योधन इतने वर्षों से अन्याय कर रहा है, इसको तो आपने श्राप नहीं दिया, इसके तो पक्ष में लड़ रहे हो। और युधिष्ठिर जी महाराज की इतनी सी भूल हो जाती उसके लिए आप श्राप दे देते, क्या कारण? तीनों ने यही उत्तर दिया कि दुर्योधन को तो हम जानते हैं ऐसा ही है, दुर्योधन अपनी नीचता की पराकाष्ठा में है और युधिष्ठिर महाराज अपने नेकी की ऊंचाई, अपने ऊंचाई की पराकाष्ठा में है, इसलिए इनके द्वारा यदि कोई भूल हो जाए तो संसार में कितनी बड़ी गड़बड़ होगी। आज यदि युधिष्ठिर हमारा आदर नहीं करता तो कौन अपने जो है माइकों का आदर करेगा, बड़ों का आदर करेगा, गुरुजनों का आदर करेगा। इसलिए हमने ऐसा कहा है, युधिष्ठिर जी तुम प्रणाम करने नहीं आते तो हम तुमको नष्ट कर देते और मार देते, हम दुराशीष देते, तुम विजय का आशीर्वाद नहीं देते। ऐसी बातें युधिष्ठिर जी महाराज में थी। युधिष्ठिर जी महाराज ने जब महाप्रयाण किया, जब कृष्ण भगवान परलोक में पधार गए, अपनी लीला समेट लिए, तो अपने पौत्र अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राजगद्दी पर बैठा दिया और स्वयं बिना किसी से कुछ कहे सीधे महाप्रयाण के लिए चल पड़े। भाई भी साथ में, द्रौपदी भी साथ में, सब साथ में। भगवान के चरणारविंदों का ध्यान करते करते जा रहे थे। अब भगवान यहां नहीं है तो फिर अपने क्या करेंगे? भगवान अपने लीला समेट ली तो अपने भी समेटो। तो चलने लगे, चलने लगे, चलने लगे, तो वह जब स्वर्ग का दरवाजा आया तब वह युधिष्ठिर महाराज को कहा, आइए आप रथ में बैठिए। युधिष्ठिर का मेरे भाई लोग, आपके भाई लोग तो नहीं चल सकेंगे, भाई लोग नहीं जा सकते तो मैं भी नहीं जाऊंगा, द्रौपदी भी नहीं जाएगी। तो जिन्होंने इतना हमारे जीवन में साथ दिया, भाई लोग मेरे साथ जिए मरे, द्रौपदी इतनी श्रेष्ठ पतिव्रता, वो यदि हमारे साथ नहीं तो हम अकेले स्वर्ग में नहीं जाएंगे। स्वीकार नहीं किया। तब इंद्र ने कहा कि अच्छा अच्छा अच्छा, ये आपके भाई है ना, इनको हम पहले स्वर्ग में भेजते हैं, उसके बाद ठीक है ये बात मान। तो पहले वो स्वर्ग में चले गए कि अब चलो। तो साथ में कुत्ता था, कुत्ता बहुत दूर से चला आ रहा था। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि कुत्ता भी मेरे साथ है, क्या बात करते हैं आप, हर बात में शर्त लगाओगे। कुत्ता पालने वाला होता है, वो भी स्वर्ग में नहीं जा सकता, कुत्ता कैसे चला जाएगा? ये कुत्ता बहुत देर से मेरे साथ आ रहा है, बहुत दूर से आ रहा है, इसने मेरा साथ नहीं छोड़ा, आज मैं अपनी अनुकूलता देखकर इसका कैसे साथ छोड़ दूं? नरक में जाओगे, कुत्ते का पक्ष ले रहे हो आप, नरक में जाओ, भेज दो, चले जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, हम कुत्ते को साथ में लेकर के जाएंगे। तब वो कुत्ता था, वो साक्षात धर्मराज ही था। मुस्कुराए, इंद्र ने कुत्ते को देखा, कुत्ते अपने रूप में आए और युधिष्ठिर महाराज आश्चर्य, आप तो वही धर्मराज जी हो जो जल के वहां पर आकर के यक्ष बन करके रहो, तो बस वही, हम तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। देखे अपने साथी का साथ कितना निभाते हो। बैठा लिया, चलने लगे तो एक नरक दिखाई देगा, नरक, बड़ा भयंकर नरक। दृष्टि मन करे ये नरक, शर्त ये थी कि जब तक युधिष्ठिर ये न कह दे कि इस नरक का अंत कहां है, तब तक इसको नरक में ले जाना। जिस दिन कह दे ये नरक कितना दूर है, बस कह बस अब ठीक है, अब चलो सो, उसका ही रास्ता है। तो देखे वो नरक में गए तो अब वो नरक के प्राणी कहते हैं, हे महाराज, हे धर्मराज जी, बड़ा अच्छा हुआ आप आ गए, आप यहीं रहो, आपके शरीर से लगने की हवा से हमको बड़ा आराम मिल रहा है, बड़ी शांति मिल रही है। जब से आप इस रास्ते से प्रवेश किए चल रहे हो तब से हमारे दंड हमको कष्ट नहीं दे रहे हैं। युधिष्ठिर जी ने कहा, हमको तो यहीं रखो साहब, उतार दो रथ से, यहीं बैठेंगे हम, यहीं रहेंगे। कहा कि नहीं महाराज, ये तो नरक में लोगों का, कहा यहां आप कह रहे बड़ी गंदगी में, कुछ भी हो यार, मेरे कारण से किसी दुखी को सुख मिलता है, और उसके बदले मुझे थोड़ा दुख भी मिलता है तो वो दुख आपके स्वर्ग के सुखों से अनंत गुना आनंद देने वाला है। मैं तो यहां से नहीं जाऊंगा, मैं तो यहीं रहूंगा। नहीं गए, थोड़ी देर में एकदम दृश्य बदल गया। इंद्रराज इंद्र से पूछा, इंद्र क्या बात है, अभी तो आपने हमको नरक दिखाया, नरक कहां चला गया? युधिष्ठिर महाराज, जैसे आपने कल्पित झूठ कहा था, अश्वत्थामा हतो नरोवा कुंजरोवा, उसी प्रकार से आपको उसके फल में कल्पित नरक बताया गया है। हम संसार को ये बताना चाहते हैं कि युधिष्ठिर जैसे महापुरुष भी यदि कल्पित सत्य बोलते हैं, कल्पित असत्य बोलते हैं। अश्वत्थामा मरा तो हाथी, लेकिन चकमा दिया ना, और जिस ऋषि ने, जिस आचार्य ने आपके वचनों पर भरोसा डाल दिया था कि मैं युधिष्ठिर कहे तो मानू, अपने बेटे का भी भरोसा नहीं किया, अपने और लोगों का भरोसा नहीं किया, अपने और शिष्यों पर भरोसा नहीं किया, जिस पक्ष में युद्ध कर रहे थे उस पक्ष के सैनिक पर विश्वास नहीं किया, और आपको मार रहे थे लेकिन आप पर इतना विश्वास किया कि युधिष्ठिर कहे तो मैं मानूंगा, और आपने अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो वा कहना चाहिए था। सबसे पहले कुंजरो अश्वत्थामा मृता है, हाथी जो अश्वत्थामा है वो मरा है, आपने कितना कपट किया, अश्वत्थामा हत है, अश्वत्थामा मर गया, चाहे वो मनुष्य हो चाहे हाथी हो, इसको पतली आवाज में बोल दिया नरोवा कुंजरोवा, कुंजर बोलते हैं हाथी को, तो आपको ये नरक दिखाया है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को सावधान रहना चाहिए कि ये सब चीजें तो युधिष्ठिर से नहीं छूटी, तो और से कैसे छूटी जाएंगी। वो नरक वहीं बंद हो गया और फिर जो है आगे स्वर्ग में गए, वहां पर ये सब भाई बंधु सब मिले। कहते हैं वहां दुर्योधन वगैरह भी मिले, कि दुर्योधन नरक में नहीं गया क्या, कि युद्ध के अंदर मरा था ना, इसलिए उसको वेदव्यास जी ने बड़े दिव्य भाव से दिखाया है। एक बार क्या हुआ कि जब धृतराष्ट्र और गांधारी कुंती तीनों के तीनों वन में चले गए विदुर जी के कहने से, उसके बाद उनको खूब ढूंढा युधिष्ठिर महाराज ने, ढूंढते ढूंढते गांधारी के वहां पर, धृतराष्ट्र के वहां पर पहुंच गए। इतने में व्यास जी आ गए। व्यास जी ने कहा कि तुम इनको अपने महल में मत ले जाना, इनकी बड़ी सदगति होगी, भगवान का भजन करेंगे, अंतिम समय में भजन कर लेगा तो इसका सारा जीवन का पाप नष्ट हो जाएगा, तुम ले जाना नहीं। तो कहा कि व्यास जी महाराज, हमारे पिताजी की इच्छा क्या है ये आप इनसे पूछिए। हाँ ये बात पूछ रहा हूं, धृतराष्ट्र तुम्हारी क्या इच्छा है, मोक्ष की इच्छा है या परिवार में रहने की इच्छा है? धृतराष्ट्र ने कहा कि देखिए व्यास जी महाराज, एक इच्छा है। क्या? एक, मैंने अपने जीवन में अपने पुत्रों को कभी आंख से देखा नहीं, मैं एक बार केवल अपने पुत्रों को देखना चाहता हूं कि वे इस समय में कहां किस योनि में हैं। एक बार आप हमको दिखा दीजिए, उसके बाद फिर मैं अपना मोक्ष ही चाहूंगा, एक बार, ऐसी कुछ मेरी वासना है। और ये वासना महाराज पूरी हुए बिना मेरी मोक्ष की वासना प्रबल नहीं होगी, और वो मोक्ष की वासना प्रबल नहीं होगी तो फिर मुझे जन्म लेना पड़ेगा, कृपा करो मेरी वासना को मिटाओ। व्यास जी ने कहा, अच्छी बात, तुम उस गंगा की धारा पर देखते रहो। अब मेरे को क्या पता, सिर घुमा करके रखा, और मैं देखो दिव्य दृष्टि देता हूं। दिव्य दृष्टि दी, धृतराष्ट्र देखने में समर्थ हो गया, और गंगा जी के अंदर से उनके 100 बेटा जितने भी सब प्रकट हुए। धृतराष्ट्र, दुशासन, धृतराष्ट्र दुर्योधन, दुशासन, ये सब सब के सब शकुनी वगैरह सब उसमें से प्रकट गए। महाराज युधिष्ठिर की जय हो, हमारे महाराज युधिष्ठिर की जय हो, सब जय जयकार करते आ रहे हैं। महाबली भीम की जय हो, महारथी अतिरथी परम योद्धा गांडीवधारी अर्जुन की जय हो। धृतराष्ट्र को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे इनका तो सांप चूहे जैसा बैर, बिल्ली चूहे जैसा बैर, और ये जय जयकार कर रहे हैं। और जय जयकार नहीं, अभी और देख रहे हैं गंगा में से प्रकट होकर के बाहर या भीमसेन वगैरह खड़े, क्या दुर्योधन आकर के भीमसेन के चरणों में प्रणाम किया भीमसेन को, नहीं दुर्योधन ने आगे धृतराष्ट्र ये युधिष्ठिर को प्रणाम किया, युधिष्ठिर को, युधिष्ठिर जी महाराज ने उसको बाहों में लिया, इतना प्रेम से मिला है दुर्योधन, इतना प्रेम से, खूब बड़े प्रेम से मिला। धृतराष्ट्र ने कहा कि दुर्योधन तुम अब कैसे हो, कि पिताजी मैं पहले वाला दुर्योधन नहीं रहा हूं, सब मेरा मैल, सब मेरा पाप, सब मेरी दुर्बुद्धि, युद्ध के अंदर जो कष्ट हुआ ना उस कष्ट से एकदम साफ हो गया है, और मृत्यु के समय में जो कष्ट होता है उस कष्ट में यदि भगवत स्मरण होता है तो उस समय में सब उस कष्ट के अंदर सारे पाप एक साथ साफ हो जाते हैं। मेरा बड़ा सौभाग्य था भीमसेन के साथ युद्ध करते समय केशव वहां पर खड़े हुए थे और केशव इशारा कर रहे थे, घूम घूम के इशारा कर रहे थे, और मैं रणांगण में पड़ा हुआ बस केवल केशव का ही चिंतन कर रहा था। मेरे शरीर में भयंकर वेदना थी पिताजी, उस वेदना में मेरा सारा पाप नष्ट हो गया, और केशव का चिंतन करते 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 मैं मरा। आज देखो मेरे सारे भाव बदल गए, तो क्या अब तुम यहां रहना चाहते हो या अपने लोक में, ना हम हमारे लोक में जाना चाहते, यहां नहीं रहना चाहते व्यास जी महाराज, यहां नहीं रहे, क्यों नहीं, हमारे चित्त में जब कृष्ण बस गया अब यहां रह के क्या करेंगे। हम बहुत आनंद में वहां बैठे हुए खूब बड़े प्रेम से कृष्ण का दर्शन करते हैं, कृष्ण का कीर्तन करते हैं, बड़ी शांति, बड़ा आनंद और बड़ा दिव्य भाव है। हम तो सब अब आपकी वहां पर बैठे बैठे प्रतीक्षा कर रहे हैं। व्यास जी महाराज ने सारा दृश्य दिखाने के बाद कहा, क्यों धृतराष्ट्र, कि बस महाराज अब मैं निहाल हो गया। व्यास जी भी चले गए, सब वो लोग भी चले गए, युधिष्ठिर महाराज महल में चले गए, और सबको बड़ा संतोष, बड़ा आनंद का अनुभव हुआ। अब कल भीमसेन की कथा चलेगी। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।